नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत इसके एक खास अध्याय की गहराई में उतरेंगे।
जी, अध्याय का शीर्षक है शांति कुंज में गायत्री तीर्थ की स्थापना। तो आज हम पूज्य गुरुदेव के ही शब्दों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि हरिद्वार में इस महान संस्थान की नींव कैसे पड़ी, इसके पीछे क्या सोच थी, क्या उद्देश्य था। चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा।
जी, तो मथुरा से हरिद्वार आने के बाद पूज्य गुरुदेव ने वो भूमि जहां आज शांति कुंज में वहां निर्माण कार्य शुरू किया।
अच्छा।
शुरुआत में तो बस एक छोटा सा भवन बना था, माताजी और उनके साथ जो कन्याएं रहती थी उनके रहने लायक।
हाँ, फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ होगा।
बिल्कुल, फिर और जमीन ली गई और विस्तार किया गया। इच्छा ये थी कि एक ऐसा ऋषि आश्रम बने जो मतलब देवात्मा हिमालय और हमारी महान ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करें। हाँ हाँ, मैंने भी यही पढ़ा है, इसीलिए शायद वो गंगा और उत्तराखंड का प्रतीक देवालय, फिर गायत्री मंदिर, ऋषियों की प्रतिमाएं, रहने की जगह, भोजनालय, प्रवचन कक्ष, ये सब बना।
जी हाँ, और ये सब बनने में करीब 2 साल लग गए।
2 साल?
अच्छा। और यहाँ स्थापित होने के बाद सबसे पहला और बड़ा संकल्प लिया गया इस स्थान की जो प्रसुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा है उसे जगाने के लिए।
वो 24 लक्ष गायत्री महापुरुष चरण वाला?
हाँ, वही 24 लक्ष गायत्री मंत्र जप के 24 अखंड महापुरुषकरण का संकल्प। और इसकी शुरुआत हुई 9 कन्याओं से।
सिर्फ 9?
हाँ, शुरुआत में 9 थी जो बाद में 27 हो गई। ये दिन रात जप करती थी और दिन में पूज्य माता जी से अलग अलग विषयों की शिक्षा लेती थी।
अच्छा, तो मतलब सिर्फ आध्यात्मिक साधनाएं नहीं थी, मैंने सुना है कि इन्हीं कन्याओं को बाद में संगीत और प्रवचन में भी पारंगत किया गया।
बिल्कुल, और फिर उन्हें देश भर में नारी जागरण के लिए भेजा गया 5-5 के समूहों में।
अरे वाह, ये तो उस समय के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील सोच है, नारी सशक्तिकरण का बड़ा कदम।
निश्चित रूप से ये एक अनूठा प्रयोग था और इसके साथ साथ तेजस्वी कार्यकर्ता तैयार करने के लिए भी कई तरह के प्रशिक्षण सत्र चलाए गए,
जैसे वो युगशिल्पी सत्र।
हाँ, युगशिल्पी सत्र, प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, वानप्रस्थ सत्र, ताकि समाज के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार हो।
फिर गंगा का तट, हिमालय की छाया, यहाँ का दिव्य वातावरण, इसने सामान्य साधकों को भी बहुत आकर्षित किया।
तो जाहिर है जब काम बढ़ा, लोग बढ़े, तो विस्तार की जरूरत पड़ी होगी, गायत्री नगर वगैरह।
जी हाँ, बिल्कुल, बढ़ती गतिविधियां और लोगों की संख्या देखकर 240 क्वार्टर वाला एक गायत्री नगर बसाया गया। एक बड़ा प्रवचन हॉल बना, 9 कुंडीय यज्ञशाला बनी
जहाँ रोज यज्ञ होता था।
हाँ, प्रतिदिन। और एक छोटा प्रेस भी स्थापित हुआ। और इसी दौरान वो जो अनूठा संस्थान है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, उसका भव्य भवन भी बनना शुरू हुआ।
इतना बड़ा तंत्र खड़ा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी पूज्य गुरुदेव को, कोई खास वजह? हाँ, उन्होंने भगवान बुद्ध के विहारों से प्रेरणा ली थी और आदि शंकराचार्य जी ने जो धाम स्थापित किए थे उनसे भी।
अच्छा।
उनका लक्ष्य था कि देश के कोने कोने में ऐसे केंद्र बने, गायत्री शक्ति पीठ, प्रज्ञा संस्थान, जो युग चेतना का प्रसार करे।
और ये हुआ भी, मैंने पढ़ा है कि बहुत तेजी से केंद्र स्थापित हुए।
आप यकीन नहीं करेंगी, प्राणवान परिजनों के संकल्प और श्रम से सिर्फ 2 वर्षों में।
2 साल में?
हाँ, सिर्फ 2 साल में 2400 ऐसे भवन बन गए।
2400, ये तो कमाल है, मतलब कार्यकर्ताओं का समर्पण अविश्वसनीय रहा होगा।
बिल्कुल। और फिर एक और योजना बनी चल प्रज्ञा पीठों की।
ये क्या था, मोबाइल लाइब्रेरी जैसा कुछ?
हाँ, एक तरह से वही, गाड़ियाँ थी जो पुस्तकें और दूसरी ज्ञान सामग्री लेकर गांव गांव नगर नगर घूमती थी।
इनकी संख्या भी काफी बढ़ गई थी शायद।
हाँ, बढ़ते बढ़ते 12,000 तक पहुँच गई। तो ये जो स्थिर केंद्र थे और ये चलते फिरते केंद्र, ये सब मिलकर रोज लाखों लोगों तक गुरुदेव का संदेश और प्रेरणा पहुंचा रहे थे।
ज्ञान प्रसार के लिए साहित्य का सृजन भी तो बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा।
अवश्य, मथुरा में जो साहित्य लिखा गया था वो तो था ही, हरिद्वार आकर पूज्य गुरुदेव ने 18 खंडों में प्रज्ञा पुराण लिखने का निश्चय किया।
प्रज्ञा पुराण?
जी, और साथ ही आम लोगों को ऋषियों की कार्यप्रणाली, उनके विचारों से जोड़ने के लिए रोज 8 पेज के छोटे छोटे फोल्डर लिखे जाने लगे, और भाषा सीखने के लिए एक भाषा विद्यालय भी खोला गया।
वाह, और यहाँ सिर्फ नया सृजन ही नहीं हुआ बल्कि मुझे लगता है प्राचीन ऋषि परंपराओं को भी पुनर्जीवित किया गया, जैसे गुरुकुल, आयुर्वेद।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। जमदग्नि ऋषि की परंपरा का गुरुकुल शुरू हुआ, चरक ऋषि की परंपरा में आयुर्वेद का काम हुआ, उसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों का एक उद्यान लगाया गया, शोध केंद्र बना।
और खगोल विज्ञान भी आर्यभट्ट की परंपरा में।
जी हाँ, आर्यभट्ट की खगोल विद्या के लिए वेदशाला बनी, पंचांग प्रकाशन शुरू हुआ और फिर आधुनिक तकनीक का उपयोग करके प्रकाश चित्र विज्ञान मतलब वीडियो फिल्में वगैरह भी बनने लगी।
लेकिन इन सब में शायद सबसे अनूठा तो ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान ही है। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, ये विचार ही अपने आप में कितना अलग है।
सही कहा आपने, ये शायद दुनिया की पहली ऐसी लैब है जहां वैज्ञानिक उपकरणों से ये शोध हो रहा है कि अध्यात्म का मतलब यज्ञ, मंत्र जप, ध्यान, इन सब का शरीर पर, मन पर, यहां तक कि पर्यावरण पर क्या वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।
यज्ञ विज्ञान पर तो खास तौर से शोध चल रहा है।
तो शांति कुंज सिर्फ शोध, प्रशिक्षण, साहित्य सृजन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक सिद्ध पीठ भी बन गया जहाँ लोग संस्कारों के लिए आते हैं।
बिल्कुल, यहाँ बच्चों के अन्नप्राशन से लेकर यज्ञोपवीत तक 16 संस्कार कराने की पूरी व्यवस्था है।
लोग अपने पूर्वजों के श्राद्ध तर्पण के लिए भी आते हैं और बिना दहेज के आदर्श विवाह भी यहाँ होते हैं।
और ये सब चलाने वाले कार्यकर्ता, मैंने सुना है कि बहुत उच्च शिक्षित लोग अपनी अच्छी भली नौकरियां छोड़कर यहाँ सेवा करते हैं, कई तो आपका खर्चा भी खुद उठाते हैं।
जी, ये शांति कुंज की सबसे बड़ी विशेषता और शक्ति है। MA, MSc, PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, आचार्य, ऐसे उच्च शिक्षित लोग पूरी तरह स्वेच्छा से, सेवा भाव से यहाँ समर्पित हैं। ये पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और यहाँ के वातावरण का ही असर है।
अद्भुत। और गुरुदेव को पूरा विश्वास था कि उनके जाने के बाद भी ये मिशन और बढ़ता ही जाएगा।
तो हमने देखा कि कैसे पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में लगभग शून्य से शुरुआत करके जन सहयोग और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के एक अद्भुत समर्पण के बल पर शांति कुंज सिर्फ एक आश्रम न रहकर आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक चेतना का एक कितना विशाल केंद्र बन गया।
हाँ, ये वाकई में प्राचीन ऋषि परंपराओं के पुनर्जीवन का, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की यात्रा का एक जीवंत उदाहरण है। जैसा गुरुदेव कहते थे कि प्रज्ञा अवतार की इस वेला में ये मत्स्य अवतार की तरह बढ़ता ही जाएगा। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ये जो दृष्टि थी कि प्राचीन ऋषि ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर ही व्यक्ति और समाज का समग्र उत्थान हो सकता है, आज के इस जटिल दौर में, आज की चुनौतियों के बीच, ये दृष्टि हमारे लिए कितनी प्रासंगिक और कितनी आवश्यक है।